नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ दी अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के सीजन 2 में। दोस्तों, हमारे आज के जो किरदार हैं उनके बारे में शायद से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, या तो फिर ना के बराबर ही सुना होगा। तो उनका नाम है भागदत्त। और आज का जो टाइटल है, जिस जो एपिसोड है उसका टाइटल है भागदत्त दी एजेड वॉरियर। तो दोस्तों, इससे पहले कि भागदत्त के बारे में आपको और कुछ कहानियाँ सुनाऊँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो महाभारत का लड़ाई हुआ था, जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत सारे राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था। कोई पांडवों की तरफ से, कोई कौरवों की तरफ से। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि सबको धर्म की स्थापना करना है इसलिए वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, या फिर कुछ और रीज़न है जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए उनके साथ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोगों का पर्सनल रीज़न भी था, जैसे कि तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, हम लोग दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो ये भी था। और ये जो भागदत्त हैं, इनका भी कुछ ऐसा ही कहानी था। उनको पांडवों के अगेंस्ट में जाना उनका पर्सनल रीज़न था। ऐसा नहीं था कि कौरवों के सपोर्टर थे या फिर ऐसा कुछ था नहीं। तो इससे रिलेटेड एक कहानी है कि क्यों उन्होंने कौरवों का साथ दिया, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि महाभारत में ये इनका रिलेशन क्या है पांडवों से या कौरवों से, ताकि वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। तो भागदत्त जो हैं वो लड़ाई में वो कौरवों के साथ में थे, ठीक है। अब जैसा कि जो टाइटल में मैंने नाम दिया है कि द एजेड वॉरियर, तो नाम से ही ये पता चल जा रहा है कि ये बहुत ही एजेड रहे होंगे जब ये लड़ाई में गए होंगे। लेकिन आप शायद से ये नहीं जानते हैं कि वो इतने ज़्यादा एजेड थे कि एज के कारण इनके आंखों के सामने का जो स्किन है वो आंख के नीचे आ जाता था, मतलब इनका आंख ढक जाता था, इतना ज़्यादा रिंकल्स था इनको। तो ये उस चीज़ से बचने के लिए अपने सिर पे एक सिल्क का कपड़ा बांधते थे, जिससे कि जो स्किन है वो लटक के आंख के आगे ना आ जाए और इनको दिखना बंद ना हो जाए। तो ये कहने का मतलब है कि ये इतना ज़्यादा एजेड थे। अच्छा, अब भागदत्त के बारे में एक स्पेशल बात ये है कि जितने ये फेमस थे, जितने ये बड़े योद्धा थे, ठीक इन्हीं की तरह इनका हाथी भी बहुत बड़ा योद्धा था। और इनके हाथी का नाम था सुप्रतीक हाथी। सुप्रतीक हाथी जो है एक ऐसा हाथी की कैटेगरी है जो कहते हैं कि हम लोगों के पुराण में भी इस हाथी का नाम है। अगर आप को कभी मौका मिले, अगर आप कभी पढ़ पाएँ, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कहते हैं कि टोटल 8 हाथियों ने अपने पीठ पे उठा के रखा हुआ है, जिसको दिग्गज कहते हैं। तो उसमें जो हाथी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में खड़ा है उसका नाम भी सुप्रतीक है। तो खैर, अभी जो भागदत्त हैं उनके हाथी का भी नाम सुप्रतीक है। और कहते हैं कि जो हाथियों का वार होता है, जिसमें कि आप हाथी पे बैठ के एक सेना को लेके जाते हैं लड़ाई करने के लिए, उस कैटेगरी में इनफैक्ट भागदत्त को हराना बहुत मुश्किल था। तो अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि भागदत्त जो हैं वो एक ही बहुत ही एजेड वॉरियर हैं, उनके पास एक बहुत ही फेमस हाथी है जिसका नाम सुप्रतीक है, और वो महाभारत की लड़ाई में कौरवों की तरफ से लड़े थे। ये अभी आपको पता चल गया है। अब आपको थोड़ा सा इनके पर्सनल डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये भागदत्त जो हैं, कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो एक बसकला नाम के राक्षस के हाथ या पैर, ये दो में से किसी एक जगह से इनका जन्म हुआ था। और ये प्रगज्योतिषा नाम करके एक जगह था, ये वहाँ के राजा थे। प्रगज्योतिषा आज के डेट में आसाम के आसपास, या इनफैक्ट आसाम में ही माना जाता है। तो ये वहाँ के राजा थे। और इनकी लड़ाई जो है पांडवों से, या फिर कुरुक्षेत्र में पांडवों के अगेंस्ट में जाने के पीछे एक कहानी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जब महाभारत का लड़ाई वड़ाई के बहुत पहले युधिष्ठिर ने एक राजसू यज्ञ किया था। ठीक है, अब राजसू यज्ञ का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे राजा महाराजा लोग एक यज्ञ करते थे अपना वर्चस्व को फैलाने के लिए। बेसिकली उसमें होता ये था कि राजा ने यज्ञ किया और अपना एक सेना का टुकड़ी के साथ में वो हर एक राज्य में वो भेज देते थे कि वो सेना की टुकड़ी जिस जिस राज्य से गुजरेगी वो राज्य आपके अंडर में हो जाएगा, और अगर उन्होंने आपको रोका तो फिर आपके साथ लड़ाई करनी होगी। तो ये मेनली था कि अपना वर्चस्व की लड़ाई है, तो इसमें लड़ के आपको दूसरे को अपने अधीन में करना है। अब इसी तरह का एक होता है जैसे अश्वमेघ यज्ञ, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लड़ाई वड़ाई जीत चुके हो पहले और लास्ट में अपना वर्चस्व बाकी लोगों को दिखाने के लिए घोड़ा छोड़ देते हो। तो ये है, तो इधर क्या होता है कि ये राजसू यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर, और ये अर्जुन के साथ में मतलब अर्जुन को कमांडर बना देते हैं और भेजते हैं सेना का टुकड़ी कि जाओ तुम मेरा बाकी राज्यों को तुम अपने अंडर में ले लो, मतलब मेरे अंडर में ले लो। तो कहते हैं कि ये उसी प्रोसेस में प्रगज्योतिषा पहुंच जाते हैं। अब भगदत्त जो है वो कोई नॉर्मल साधारण इंसान नहीं है, वो असुर से पैदा हुआ एक योद्धा है, और उनके जो फादर हैं उनका नाम था नरकासुर, वो भी अलग ही लेवल के योद्धा थे अपने टाइम पे। तो ये अर्जुन को मना कर देते हैं कि भाई मैं तो सरेंडर नहीं करूँगा और तुम्हें लड़ाई करनी होगी क्योंकि यहाँ से तुम ऐसे ही मुझे अधीन नहीं बना सकते हो टाइप्स। तो फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो कहते हैं कि ये लड़ाई इतना घमासान होता है अर्जुन और भगदत्त के बीच में कि ये लगातार 8 दिनों तक चलते रहता है। अब 8 दिनों तक किसी सिर्फ 2 जन के बीच में लड़ाई होना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप सोचो कि महाभारत में जो लड़ाई था वो 18 दिन तक हुआ था, लेकिन उसमें कितने राजा इन्वॉल्व्ड थे, कितने सिपाही थे, मतलब बहुत क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अर्जुन और भगदत्त है और सिर्फ इन दोनों की लड़ाई 8 दिनों तक चली थी, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर ही थे। तो खैर आखिर में क्या होता है कि अर्जुन जो है वो जीत जाते हैं भगदत्त से, और भगदत्त बहुत इम्प्रेस्ड भी होते हैं कि इतने कम एज का योद्धा है जो इतना अच्छा टक्कर दिया और फिर जीत गया मेरे से। तो वो फिर सरेंडर मान जाते हैं और युधिष्ठिर को अपना राजा मान लेते हैं। इंसिडेंट था कि चाहे जो भी हो जैसा भी हो अप्रिशिएट कर दिया जितना था ठीक है, बट हारने का जो अंदर में एक जख्म होता है वो रह जाता है। तो एक ये रीज़न था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों के अगेंस्ट में जाने का। और दूसरा जो रीज़न है वो थोड़ा छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था उसमें भगदत्त भी पहुंचे हुए थे और उसी में अर्जुन जो है वो ब्राह्मण बन के पहुंचा हुआ था। अब कायदे से क्या होता है कि वो क्षत्रियों का होता है, क्षत्रिय जाते हैं और वहाँ पे वो लोग स्वयंवर में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो तो भेष चेंज करके ब्राह्मण के रूप में गया था, तो वहाँ पे जिनको नहीं पता था उनके लिए ये अनफेयर था कि ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया, जो कि बाद में पता चलता है कि अच्छा ये अर्जुन है, तो उसको लगता है कि ये छलकपट वाला चीज़ है जो कि अच्छा नहीं है, तो एक वो भी इसके मन में टीस रह गया था। ये दो रीज़न तो अपनी जगह हैं, बट इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा रीज़न था पांडवों के अगेंस्ट में जाने का, और वो थे कृष्ण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इसके जो फादर हैं मतलब भगदत्त के जो फादर हैं उनका नाम था नरकासुर, और नरकासुर को असल में कृष्ण जी ने मारा था। तो ये एक बदला लेने का भाव जो है वो उनके मन में था, भगदत्त के मन में था। तो जब महाभारत का लड़ाई शुरू हुआ तो उसमें अर्जुन और कृष्ण एक साथ ही थे, तो इनको लगा कि इससे अच्छा और मौका नहीं आएगा अपने जो भी इनके मन में खुन्नस है वो सबका एक साथ निकालने के लिए। अच्छा दोस्तों, ये जो नरकासुर जो मैं कह रहा हूँ जो इनके फादर हैं, मैं उनसे रिलेटेड एक एपिसोड बनाने वाला हूँ। हालांकि उनका कुछ डायरेक्टली नहीं है कनेक्शन महाभारत की लड़ाई से, बट उनसे रिलेटेड जो कहानियाँ हैं जो घटनाएँ हैं वो बहुत मज़ेदार हैं। तो इसके लिए मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ कि मैं उन पर एक एपिसोड बनाने वाला हूँ। तो अभी वापस आ जाते हैं कहानी पर। तो भगदत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी तक कि क्या हैं, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके घर पे फादर कौन है, या फिर जो उनका पर्सनल बातें हैं। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि वो ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि वो योद्धा थे वो क्यों कह रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ जो कि महाभारत की लड़ाई का है। तो महाभारत की लड़ाई का ये चौथा दिन रहता है। अब ये चौथे दिन में ये क्या करते हैं कि अपने हाथी पे बैठ के, जो सुप्रतीक हाथी है उस पे बैठ के ये भीम पे अटैक कर देते हैं, और कहते हैं कि इनका अटैक जो है वो इतना डेंजरस रहता है कि भीम बेहोश हो जाते हैं, और भीम को बचाने के लिए उनका बेटा घटोत्कच आ जाता है। तो घटोत्कच भी आके बचाता है, तो किस तरीके से बचाता है? अभी कहते हैं कि घटोत्कच को बहुत सारा मायावी शक्ति था, क्योंकि घटोत्कच की माँ जो है वो हिडिंबा राक्षस है, तो वो अपने माया की शक्ति से ये सुप्रतीक हाथी के सामने में ढेर सारा हाथी क्रिएट कर देता है, जिससे कि उसके हाथी घबरा जाता है कि इतने बड़े बड़े मायावी हाथी रहते हैं। और इसी बीच में वो फिर इसको भीम को फिर बचा पाता है। अब ये तो हो गया चौथे दिन वाली बात। अब ठीक कुछ दिन, दो दिन के बाद, मतलब जब सातवें दिन की लड़ाई होती है, उस दिन घटोत्कच फिर आता है, अटैक करता है भगदत्त पे। लेकिन भगदत्त जो है वो उस टाइम पे रेडी रहते हैं, तो भगदत्त और सुप्रतीक वो दोनों मिलके घटोत्कच का जो भी रथ वथ रहता है, जितना अस्त्र वस्त्र रहता है, सब तोड़ देता है। और कहते हैं कि बहुत मुश्किल से घटोत्कच जान बचा के उस दिन वहाँ से भाग जाता है अपना सातवें दिन। तो इस तरह से लड़ाई आगे बढ़ती है और फिर आता है बारहवां दिन, जहाँ पे दुर्योधन भगदत्त से कहता है कि आप अपना हाथी का पूरा जो लश्कर है वो लेके जाओ और भीम को आप वहाँ पे ख़त्म कर दो। तो ये अपना सुप्रतीक हाथी पे बैठ के जाते हैं और एक एक करके पूरा मतलब तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। तो जब भीम के साथ एक बार पहले ही लड़ाई हो चुका था, तो इस बार वो आते के साथ क्या करते हैं कि सुप्रतीक भीम के रथ को ही तोड़ देता है, उसके जो सारथी है सारथी को मार देता है, और भीम एकदम लाचार हो जाता है। और जबकि आप शायद नहीं जानते होंगे कि भीम को 10,000 हाथियों की शक्ति का वरदान था, और नॉर्मल हाथी को भीम हाथ से उठा के यूं ही फेंक देते थे, लेकिन जो सुप्रतीक है हाथी हैं उसके सामने मतलब भीम जो है ना एकदम बच्चे की तरह लग रहे थे कि वो संभाल ही नहीं पा रहे। तो किसी तरीके से ये जान बचाने के लिए वो हाथी के नीचे चले जाते हैं। अब इधर सब कोई देखता है कि भाई भीम का रथ टूट गया है, उसका सारथी मर गया है, तो हल्ला हो जाता है कि भीम मारा गया। अब ये खबर युधिष्ठिर तक भी पहुंचता है, अब वो तो युधिष्ठिर उदास हो जाते हैं कि भाई भीम मारा गया है। तो वो एक और राजा को कहते हैं कि आप जाओ और उसको मारो किसी भी तरीके से। लेकिन भीम कहता कि वो बहुत फुर्तीले भी थे, तो वो हाथी जैसे जैसे सुप्रतीक घूम रहा था ना, तो वो नीचे में ही वो अपने आप को उसकी नज़र से बचा के रखे थे और घूम रहे थे वो भी, और जब जब उनको मौका मिल रहा था तो हाथी के पैर को वो चोट पहुंचा रहे थे। तो अभी इधर युधिष्ठिर का बात सुन के बाकी दो राजा आते हैं, अटैक कर देते हैं भगदत्त पे, और फिर जब इनका आपस में लड़ाई होने लग जाता है तो भीम किसी तरीके से फिर वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो खैर बाद में भीम को देख के सबको लगता है कि अरे चलो बच के आ गया वापस, चलो अच्छी बात है। तो मतलब भगदत्त का कहर ऐसा था। अब इधर बारहवें दिन ही, जिस दिन भीम बच के निकल जाते हैं, अर्जुन और कृष्ण भगदत्त के सामने आ जाते हैं। अब भगदत्त जैसे देखते हैं दोनों को, एकदम गुस्से से उन दोनों पे अटैक करने के लिए वो तीर चलाने लग जाता है। लेकिन अर्जुन भाई बहुत बड़े योद्धा थे, तो वो चाहे जितना अटैक था वो सब अटैक को वो धीरे धीरे करके काट रहे थे। और कहते हैं कि भगदत्त जितना अर्जुन पे तीर चला रहे थे उससे ज़्यादा वो कृष्ण पे अटैक कर रहे थे, क्योंकि उनका गुस्सा था उनके पिता का मौत का बदला। तो एक एक करके वो सारा तीर चला रहे हैं सब, इधर अर्जुन जो है सब काट कर दे रहा है। तो अर्जुन धीरे धीरे करके इनके जितने भी बड़े वेपन थे वो सबको वो काट देता है, और फिर इसके हाथी को भी मार देता है, सुप्रतीक हाथी को भी अर्जुन मार देता है। अब हाथी के मरने के बाद भगदत्त जो है वो थोड़ा बौखला जाता है, और बौखला के वो वैष्णवस्त्र चला देता है अर्जुन पे। अब वैष्णवस्त्र जो है वो असल में एक तरह का ब्रह्मास्त्र है जिसको कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कहते हैं कि रामायण के टाइम पे वैष्णवस्त्र राम भगवान एक बार चला रहे थे जिसमें ब्रह्मा जो है वो भी डर गए थे। तो जैसे ही ये वैष्णवस्त्र भगदत्त चलाते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, वो तुरंत सामने आ जाते हैं और ये वैष्णवस्त्र उनके छाती से टकरा के फूल बन के गिर जाता है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वैष्णवस्त्र जो है वो असल में विष्णु जी का दिया हुआ अस्त्र है और वो वरदान में उन्होंने नरकासुर को दिया था, मतलब भगदत्त के फादर को दिया था, जहाँ से भगदत्त को ये मिला था। अब वैष्णवस्त्र जो है वो चूंकि विष्णु जी का अस्त्र है और उसको सिर्फ विष्णु जी खुद ही रोक सकते हैं, तो अब कृष्ण जो है वो तो विष्णु के ही रूप हैं, इसीलिए जब वो सामने आ जाते हैं तब ये अस्त्र उनसे टकरा के फूल बन जाता है। क्योंकि कृष्ण जी को पता था कि अगर ये अर्जुन को लग गया तो अर्जुन बचेगा नहीं, तो इस तरह से कई बार की तरह कृष्ण एक बार फिर से अर्जुन को यहाँ पर बचा लेते हैं। अब कृष्ण ही थे जिनको पता था कि ये भगदत्त जो है ये सिर पे कपड़ा क्यों बांध के रखा है, तो वो अर्जुन से बोलते हैं कि पहले इसके सिर के ऊपर का जो कपड़ा है, जो सिल्क का कपड़ा है, उसको तुम काट दो तो वो अंधा हो जाएगा। तो अर्जुन को उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि क्यों अंधा हो जाएगा, तो खैर वो डायरेक्टली ऐसा तीर चलाता है जिससे कि उसका सिर का कपड़ा कट जाता है। तो आपको बताया ही है कि कपड़ा कट जाने पे इसके सामने का जो चमड़ा होता है सिर का वो लटक के आँख के सामने आ जाता है जिससे कि ये अंधा हो जाता है। अभी जैसे ही अंधा होता है वैसे ही अर्जुन जो है इसको तीर चला के फिर मार देते हैं। और भगदत्त के मरने के बाद अर्जुन क्या करते हैं कि जाते हैं और अपना आखिरी रेस्पेक्ट उनको पे करते हैं और उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि भगदत्त जो हैं वो इंद्र के बड़े अच्छे दोस्त थे और इंद्र जो हैं वो अर्जुन के देव पिता लगते हैं। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको वो जाते हैं, चक्कर लगाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी भगदत्त के बारे में। अब क्या है कि अभी महाभारत की जो लड़ाई है वहाँ पे एक दिन भी बचे रह जाना मतलब बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे योद्धा, इतने तरह का अटैक हो रहा है, कहाँ से कौन किसे कब मार दे पता भी नहीं चले। तो ऐसी जगह पे इतना एज होने के बावजूद 12 दिनों तक लड़ाई करना और सिर्फ लड़ाई ही नहीं करना, पूरे दूसरे कैंप को ऐसा डर फैला देना, वो मतलब एक बहुत बड़ा योद्धा ही कर सकता है। तो और अगर उस दिन कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन शायद से मर ही गया होता 12वां दिन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़े योद्धा था, गिवन कि ये जितना इनका एज था या फिर जो इनकी स्थिति थी, शारीरिक स्थिति थी उसके हिसाब से। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे या फेसबुक के पेज पे या इनफैक्ट YouTube के चैनल पे आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हैं या अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार, ओनली विद अमित रवानी।